بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے۔ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچتاپ ہو۔ اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں तो उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है, और कुफ्र, उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा प्रसारण आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsiribir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098903506 5492। श्रोताओ, आज सोमवार है, तीर की 6, ज़िलक़ादा की 27 और जून की भी 27 तारीख। हमारी समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद हम आपको अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सुनाएंगे विश्व दर्पण, और इसके बाद आप अमरीकी मानवाधिकार के विषय पर हमारी एक विशेष चर्चा सुनेंगे। तो श्रोताओ, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ, मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने कहा है कि पाबंदियां हटाने के लिए परमाणु समझौते के बारे में बातचीत फारस खाड़ी के एक देश में शुरू होने जा रही है। यूनान ने ईरान का तेल टैंकर छोड़ दिया है जिसे उसने जब्त कर लिया था। भारत के प्रधानमंत्री ने G7 की बैठक के इतर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। हमास संगठन ने कहा है कि वो इसराइल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने कहा कि पाबंदियां हटाने के लिए परमाणु विषय पर बातचीत फारस खाड़ी के इलाके के एक देश में शुरू होने जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की तुर्की यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि ये द्विपक्षीय विमर्श के तहत होने वाली यात्रा है, जिसके बाद विदेश मंत्री तुर्कमेनिस्तान जाएंगे, जहां कैस्पियन सागर के तटीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक शिखर बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हो रही है। सीरिया में तुर्की के हमलों में आने वाली तेजी के बारे में सईद खतीबजादे ने कहा कि जंग से कभी कोई मसला हल नहीं होगा, जंग से कभी भी शांति नहीं लाई जा सकती, शांति की स्थापना के अपने खास तरीके हैं। उन्होंने कहा कि सफर में यकीनन सीरिया और इराक के बारे में भी बातचीत होगी। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अलकाज़मी की तेहरान यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये पूर्व कार्यक्रम के तहत हुई है और बगदाद ने हालिया महीनों में ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि इराकी प्रधानमंत्री सऊदी अरब की तरफ से कुछ संदेश लाए थे, जिसके आधार पर अब दोनों देशों के बीच कूटनैतिक बातचीत शुरू होगी, जिसकी तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी जोसेफ बोरेल की तेहरान यात्रा के बारे में बताया कि इस यात्रा में बोरेल ने बताया कि अमेरिका परमाणु समझौते और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 के तहत ईरान से जिन पाबंदियों को हटाने की बात कही है उन्हें हटाएगा, लेकिन हमें व्यवहारिक रूप से देखना है कि अमरीका ये करता है या नहीं। प्रवक्ता का कहना था कि अब जो वार्ता होने जा रही है वो पाबंदी हटाए जाने से संबंधित मतभेद के बिंदुओं पर होगी। सईद खतीबजादे ने बताया कि इस्लामी गणराज्य ईरान ब्रिक्स का सदस्य बनने का फैसला कर चुका है और इसके लिए औपचारिक आवेदन दे दिया गया है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि तेहरान का ख्याल है कि क्षेत्र की समस्याओं को क्षेत्र के भीतर ही हल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाया ने रविवार की शाम तेहरान में इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काजमी से भेंट वार्ता की और क्षेत्रीय हालात और इस्लामी गणतंत्र ईरान तथा सऊदी अरब के बीच वार्ता पर भूमिका अदा करने पर उनकी सराहना की। विदेश मंत्री ने इराकी प्रधानमंत्री से मुलाकात में कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान क्षेत्र के लिए भले के अलावा कुछ नहीं चाहता और दोनों देशों की राजधानियों में ईरान और सऊदी अरब के दूतावासों को दोबारा खुलने के लिए समर्थन करता है। उन्होंने यमन में युद्ध विराम का हवाला देते हुए युद्ध विराम को जारी रखने और यमन का घेराव खत्म किए जाने की जरूरत पर ईरान के समर्थन का ऐलान किया। इस मुलाकात में इराकी प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय विकास और इराक से निकटता में ईरान के दृष्टिकोण पर बल दिया और कहा कि इराक इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विस्तृत करने में गंभीर है और इसी क्रम को जारी रखेगा। इराकी प्रधानमंत्री ने संबंधों के समग्र विकास और संभावित रुकावटों को दूर करने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि हम क्षेत्र में बातचीत और सहयोग को मजबूत बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे।
ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान और इराक के अधिकारियों के संबंधों के विस्तार का मजबूत इरादा है। इराक के प्रधानमंत्री के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने जोर देकर कहा कि ईरान और इराक के वरिष्ठ अधिकारी सभी क्षेत्रों में संबंधों को विकसित और विस्तृत करने के लिए मजबूत इरादा रखते हैं। रविवार शाम इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काजमी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि इराक के साथ ईरान के संबंध सामान्य और पारंपरिक नहीं है बल्कि संबंधों की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने कहा कि आज हम इराक को ईरानी राष्ट्र के सबसे करीबी राष्ट्र के रूप में देखते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे घनिष्ठ संबंध हैं। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि आज की बातचीत में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा हुई और हमने इन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बातचीत को विस्तृत करने पर सहमति जताई है।
ग्रीस ने ईरानी तेल टैंकर को आजाद कर दिया। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि ईरानी तेल ले जा रहे एक रूसी टैंकर को छोड़ दिया गया है जिसे 2 महीने पहले अमरीकी न्यायपालिका के अनुरोध पर रोक लिया गया था। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार स्थानीय सूत्रों ने बताया कि ग्रीक अधिकारियों ने अमरीका के अनुरोध पर 2 महीने पहले जब्त किए गए ईरानी तेल को ले जा रहे एक रूसी टैंकर को रिहा कर दिया है। ग्रीक बंदरगाह पुलिस को रविवार को सूचित किया गया था कि ईरानी तेल ले जा रहा एक रूसी तेल टैंकर जिसे अप्रैल के मध्य में अमरीकी अदालत के अनुरोध पर ग्रीस में रोक दिया गया था, कथित तौर पर जहाजरानी का अपना सफर जारी कर सकता है।
ईरानी विशेषज्ञों ने स्वदेश निर्मित उपग्रह वाहक रॉकेट जुलजनाह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अनुसंधान और अन्य उद्देश्यों के लिए विकसित किए गए 3 चरणों वाले उपग्रह वाहक रॉकेट जुलजनाह के प्रयोग का उद्देश्य इसके क्रियाकलाप का मूल्यांकन करना है। नवीनतम तकनीक से लैस ईरान का सैटेलाइट कैरियर रॉकेट जुलजनाह तकनीकी रूप से दुनिया भर के ऐसे अन्य रॉकेटों के बराबर है। रॉकेट पहले 2 चरणों में ठोस ईंधन का उपयोग करता है जबकि 3रे चरण में यह तरल ईंधन का उपयोग करता है। जुलजनाह पृथ्वी की कक्षा में 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर 220 किलोग्राम वजन तक ले जाने में सक्षम है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से इतर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार तथा निवेश, रक्षा सहयोग, कृषि, जलवायु कार्रवाई और खाद्य सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ये दोनों नेताओं के बीच पहली द्विपक्षीय मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने 2019 में स्थापित द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रविवार को 2 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी पहुंचे। वो शक्तिशाली समूह और उसके सहयोगी देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि म्यूनिख में राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस के साथ सार्थक बैठक के दौरान भारत अर्जेंटीना के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की समीक्षा की गई।
फिलिस्तीन के हमास आंदोलन ने कहा है कि गजा इसराइल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच फिलिस्तीनियों के एक संगठन ने वेस्ट बैंक में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें इसराइल की ओर से पैदा होने वाले खतरों और चुनौतियों की समीक्षा की गई। सम्मेलन में फिलिस्तीनी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अश्तिया ने भाग लिया। सम्मेलन में इस बात की खासतौर पर समीक्षा की गई कि इसराइल की ओर से फिलिस्तीनियों को पलायन पर मजबूर किए जाने की प्रक्रिया को किस तरह रोका जाए। इसराइली अदालत ने लगभग एक महीना पहले मुसाफिर यता इलाके से सैकड़ों फिलिस्तीनियों को निर्वासित कर देने का आदेश जारी किया था। इसराइली अधिकारियों का कहना है कि वे इस इलाके को सैनिकों के ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मोहम्मद अश्तिया ने कहा कि यह सम्मेलन इसराइली कोशिशों पर व्यवहारिक प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि हम इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तक फिलिस्तीनी इलाकों से इसराइल का कब्जा खत्म नहीं हो जाता और फिलिस्तीनी कौम को उसके अधिकार नहीं मिल जाते, उस समय तक इस इलाके में शांति की स्थापना नहीं हो सकती।
लेबनान के हिजबुल्ला आंदोलन की केंद्रीय परिषद के सदस्य शेख काउफ ने कहा कि इसराइल के साथ सऊदी अरब का गठजोड़ फिलिस्तीन से गद्दारी है। नबील काउक ने कहा कि इसराइल से गठजोड़ दरअसल फिलिस्तीन ही नहीं लेबनान और सीरिया की भी पीठ में खंजर घोंपने के समान है। उन्होंने कहा कि लेबनान और हिजबुल्ला फिलिस्तीन के लिए पूरी तरह वफादार हैं। हाल ही में इसराइली मीडिया ने यह खबर दी है कि ज़ायनी सरकार सऊदी अरब से सामान्य रिश्ते स्थापित करने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन की प्रस्तावित पश्चिमी एशिया यात्रा से पहले वो इस विषय को अंजाम तक पहुंचा देना चाहती है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से सवाल किया है कि मादक पदार्थों के विरुद्ध युद्ध में प्रतिरोध के बावजूद ईरान को अत्याचारपूर्ण और गैर कानूनी प्रतिबंधों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज इस सवाल का जवाब देना होगा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध युद्ध में प्रतिरोध के बावजूद इस्लामी गणतंत्र ईरान को अत्याचारपूर्ण और गैर कानूनी प्रतिबंधों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान सहित दुनिया में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और कई टन मादक पदार्थ और नशीली दवाओं को आग के हवाले किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के नशा निरोधक विभाग ने इस अवसर पर मादक पदार्थ के विरुद्ध संघर्ष करने पर ईरान सहित कई देशों की सराहना करते हुए कहा कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसी मध्य इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने रविवार को नशा निरोधक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अभिशाप से लड़ने में ईरान के संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी देश अकेला मादक पदार्थों से संघर्ष नहीं कर सकता और इस बारे में सारे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को अपनी भूमिकाएं अदा करनी चाहिए। سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ مادک پدارتھوں کے خلاف جنگ میں وشو سمودائے کی اور سے ایران کے پریاسوں کی سراہنا کی گئی اور کہا کہ ان کا وشواس ہے کہ دنیا کے دوسرے دیش اور انتراشٹریہ سنستھائیں اپنے دعووں اور ذمہ داریوں کے انوسار اپنی بھومکائیں ادا نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ مادک پدارتھوں سے لڑنے میں ایران کی زبانی تعریف اس ابھیشاپ کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بل دیا کہ مادک پدارتھوں سے سنگھرش کے لیے وبھن دیشوں کی اور سے شنگھائی سمجھوتے پر ہستاکشر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وستو انٹرنیٹ پر دوسری چیزوں کے مقابلے میں بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ انہوں نے افغانستان میں مادک پدارتھوں کی کھیتی میں وردھی کا کارن بننے والے نیٹو اور امریکہ کی کاروائیوں کا بیورہ دیتے ہوئے کہا کہ دو دشکوں کے افغانستان پر اویدھ قبضے کے دوران مادک پدارتھوں کے اتپادوں میں وردھی ہوئی اور اس نے اودیوگک روپ دھارن کر لیا ہے۔ اس کا ایک کارن یہ ہے کہ وشو سمودائے امریکہ اور نیٹو سے جواب مانگنے کے اپنے قانونی، نیتک اور انسانی ادھیکاروں پر عمل نہیں کرتا۔ اسلامی گلتند ایران کے راشٹرپتی نے کہا کہ مادک پدارتھوں کے ورودھ یدھ میں ساری پربھاوی ایرانی کاروائیاں امریکہ کے اتیاچار پورن پرتبندھوں کے دور میں کی گئیں۔ ہمیں پرتبندھوں کی وجہ سے مادک پدارتھوں سے سنگھرش میں بہت سارے ہتھیار اور ٹیکنالوجی تک پہنچ نہیں ہے۔ نشیلی وستوؤں اور پدارتھوں کے نوارن ہیتو سنیکت راشٹر سنگھ کی مہا سبھا نے 7 دسمبر 1987 کو پرستاؤ سنکھیا 42-112 پارت کر ہر ورش 26 جون کو انتراشٹریہ نشہ و مادک پدارتھ نشیدھ دیوس منانے کا نرنے لیا تھا۔ یہ ایک طرف لوگوں میں چیتنا پھیلاتا ہے، وہیں دوسری اور نشے کے لتی لوگوں کے اپچار کی دشا میں بھی مہتوپورن کاریہ کرتا ہے۔ انتراشٹریہ نشہ نرودھک دیوس کے اوسر پر مادک پدارتھ ایوم افراد سے مقابلے کے لیے سنیکت راشٹر سنگھ کا کاریالے یو این او ڈی سی ایک نعرہ دیتا ہے۔ اس اوسر پر مادک پدارتھوں سے مقابلے کے لیے وبھن دیشوں دوارا اٹھائے گئے قدموں تتھا اس مارگ میں اتپن چنوتیوں اور ان کے نوارن کا الیکھ کیا جاتا ہے۔ 26 جون کا دن مادک پدارتھوں سے مقابلے کا پرتیک بن گیا ہے۔ اس اوسر پر مادک پدارتھوں کے اتپادن، تسکری ایوم سیون کے دشپرناموں سے لوگوں کو اوگت کرایا جاتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
لبنانی راشٹرپتی نے نجیب میکاتی کو نئی سرکار کے گٹھن کے لیے آمنترت کیا ہے۔ جائزہ لے رہے ہیں قائم رضوی۔
لبنان کے راشٹرپتی میشلون نے 23 جون کو 66 ورشی نجیب میکاتی کو نئی سرکار کے گٹھن کی ذمہ داری سونپی ہے۔ نجیب میکاتی سن 2021 سے لبنان کے انترم پردھان منتری کے روپ میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری دیش میں سنسدیہ چناؤ کا آیوجن کرانا تھا۔ 15 مئی 2022 کو لبنان کے سنسدیہ چناؤ آیوجت ہوئے۔ اب اگلے 4 ورشوں کے لیے میکاتی کو لبنان کا پردھان منتری نیوکت کیا گیا ہے۔ ورتمان سمے میں لبنان کے پردھان منتری کو کئی پرکار کی چنوتیوں کا سامنا ہے، جن میں آرتھک چنوتی سب سے مہتوپورن ہے۔ لبنان کی سنسد میں 128 سدسیہ ہیں۔ انہوں نے 54 متوں سے اپنے پرتیدوندوی سالے نواف سلام کو پراست کیا، جو پہلے راشٹر سنگھ میں لبنان کے پرتنیدھی رہ چکے ہیں۔ نئے پردھان منتری کے چناؤ میں 46 پرتندھیوں نے نگیٹو ووٹنگ کی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ نجیب میکاتی کو سعودی عرب اور اس کے گھٹکوں کا سمرتھن حاصل نہیں ہے۔ سالے نواف سلام کو سعودی عرب کا کھلا سمرتھن پراپت ہے۔ 128 سدسیوں میں سے 78 کا سمرتھن حاصل نہ کرنے کے کارن ان کو نئے منتری منڈل کے گٹھن میں بھی سمسیائیں آ سکتی ہیں۔ لبنان میں کچھ پدوں کو پہلے سے ہی ریزرو کیا گیا ہے۔ ऐसे में मंत्रिमंडल के गठन के समय मीकात को बहुत ही एहतियात से काम लेना होगा। इस बारे में लेबनान के एक राजनीतिक टीकाकार वाइल नज्म कहते हैं कि संवैधानिक ढंग से लेबनान की संसद में विशेष किए जाने और विचारों में मतभेदों के कारण नए मंत्रिमंडल के गठन का काम आसान नहीं होगा। कुछ जानकारों का ये कहना है कि नए मंत्रिमंडल के गठन में अधिक समय लगने के दृष्टिगत ऐसा भी हो सकता है कि नजीब मिकाती पिछले मंत्रिमंडल में थोड़ा सा फेर बदल करके उसी को फिर से पेश करें। वैसे संसद की सहमति से ये काम संभव है क्योंकि पुराने मंत्री पहले ही संसद से समर्थन हासिल कर चुके हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री के सामने एक अन्य संवैधानिक चुनौती इस देश के नए राष्ट्रपति का चयन करने की है। लेबनान में राष्ट्रपति 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। इस देश के वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। लेबनान में 29 महीनों तक चलने वाले संवैधानिक संकट के बाद 2016 में मिशेल ऑन को इस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। लेबनान के संविधान के अनुसार इस देश का राष्ट्रपति ईसाई होना चाहिए। जिन संवैधानिक चुनौतियों का उल्लेख किया गया है उनके अतिरिक्त भी लेबनान को इस समय कुछ अन्य ज्वलंत समस्याओं का भी सामना है, जिनमें आर्थिक संकट सर्वोपरि है। पिछले 2.5 वर्षों से लेबनान को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त डॉलर के मुकाबले में लेबनान की मुद्रा की वैल्यू घटती जा रही है। वहां पर ईंधन और दवाओं की कमी का मुद्दा भी गर्म है। लेबनान में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। लेबनान के वर्तमान आर्थिक संकट की गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व बैंक ने इसे शताब्दी का सबसे गंभीर आर्थिक संकट बताया है। लेबनान में नए मंत्रिमंडल के गठन और नए राष्ट्रपति के चयन में यदि विलंब होता है तो वहां पर आर्थिक संकट और अधिक गहरा सकता है।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारत में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। ब्यौरा दे रहे हैं दिल्ली से शमशाद काजमी।
भारत की सशस्त्र सेनाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना के विरुद्ध जहां पूरे देश में युवाओं ने हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किए, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी हालिया दिनों में इस योजना के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और इस योजना को वापस लिए जाने की मांग की। किसानों ने भी अग्निपथ योजना का विरोध किया और इसे नौकरी के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया। केंद्र सरकार का दावा है कि इस योजना से युवाओं को लाभ होगा। कांग्रेस ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरुद्ध दिल्ली सहित भारत के विभिन्न राज्यों में आज भी विरोध प्रदर्शन किया और सेना में भर्ती की पुरानी योजना को लागू करने की मांग की। दिल्ली के कई चुनावी क्षेत्रों में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा खड़ी की गई रुकावटों के बावजूद विरोध प्रदर्शन किया और उक्त योजना के विरुद्ध नारे लगाए और देश के युवाओं से समरसता प्रकट की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर पुलिस हमें शांतिपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, जो लोकतंत्र का खुला उल्लंघन है। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोके जाने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को घरों में नजरबंद किए जाने को लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा दी।
हमारे कार्यकर्ताओं का हम ब्लॉक अध्यक्षों को नहीं निकलने दिया जा रहा है, जो जितने भी हमारे नेता उनको अलग अलग रोका जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। तो ये लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, जिसका हम घनघोर विरोध कर हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से।
दिल्ली पुलिस का कहना था कि चूंकि प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, अतः वे यहां भीड़ न लगाएं, नहीं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाद में पुलिस ने शांतिपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस योजना को वापस लिए जाने तक वे अपना सत्याग्रह जारी रखेंगे। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा, और अब हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण। विश्व दर्पण। दोस्तों, विश्व दर्पण लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति और फिलिस्तीनी प्रतिरोध मोर्चे की ताकत से इसराइल भयभीत। अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय इस्लामी जगत का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा फिलिस्तीन का मुद्दा है। जाहिर सी बात है, बड़ी ताकतों की ओर से लाख कोशिश की गई कि इस मुद्दे को भुला दिया जाए, लेकिन फिलिस्तीनी जनता, प्रतिरोध गुट और फिलिस्तीनी संगठनों, फिलिस्तीनी जियालों और संघर्षकर्ताओं के संघर्ष की वजह से और ईरान तथा लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्ला तथा फिलिस्तीन के समर्थक देशों के प्रयासों की वजह से आज फिलिस्तीन मुद्दा पूरी तरह जिंदा है और दुनिया फिलिस्तीनी मुद्दे की ओर देख रही है। यह और बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस मामले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है। पवित्र रमजान के शुरू से ही इसराइली कट्टरपंथियों के हमले तेज हो गए और खास तौर पर मुसलमानों के पहले किबले को तेजी से निशाना बनाया जाने लगा, तो दूसरी ओर फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं की प्रतिरोधक कार्रवाइयां पूरी ताकत से जारी रहीं। ये कार्रवाइयां इतनी शक्तिशाली थीं कि खुद इसराइली मीडिया को ये स्वीकार करना पड़ा कि 1948 के अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के निवासी फिलिस्तीनियों की प्रतिरोधक कार्रवाइयों के परिणाम में नेफ्ताली बेनेट की गठबंधन सरकार का विघटन हो गया। इस दौरान गजा में जिहाद इस्लामी की सैन्य शाखा ने अजमु सादिक नामक सैन्य अभ्यास अंजाम दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि इस अभ्यास का संदेश इसराइल के लिए पूरी तरह स्पष्ट है। रिपोर्टों में बताया गया है कि मुसलमानों के पहले किबले और मस्जिदुल अक्सा पर इसराइली सैनिकों और कट्टरपंथी ज़ायोनियों के हमले तेज हो गए। बताया जाता है कि इसराइली अधिकारी जनमत के ध्यान को भटकाने के लिए फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमले तेज कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में इसराइली सैनिक लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं और फिलिस्तीनी नागरिकों को घायल और गिरफ्तार कर रहे हैं। मंगलवार और बुधवार की रात एक फिलिस्तीनी नागरिक को इसराइली सैनिकों ने गोली मारकर शहीद कर दिया। इसके एक दिन बाद भी इसराइली सैनिकों और ज़ायोनी कट्टरपंथियों ने मस्जिदुल अक्सा पर हमला किया था। इसराइली सैनिकों की हैवानियत किसी से ढकी छिपी नहीं है और पिछले 70-75 वर्षों से उसके पार्श्विक हमले लगातार जारी हैं, लेकिन देखा यह गया है कि जब इसराइल पतन की ओर बढ़ रहा है, हालिया कुछ महीनों में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के हमलों में तेजी आ गई है। इसकी क्या वजह है, विचार सुनिए पाकिस्तान के औद्योगिक शहर कराची से टीकाकार राशिद अहद के।
दरअसल इसकी वजह ये है कि यानी फलस्तीन के जो यानी मकबूजा फलस्तीन कह लीजिए इसराइल के जो सेहूनी हुकूमत है वो नर्वसकार है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी, तो ये नर्वसनेस और फ्रस्ट्रेशन उसको ऐसे इकदाम पर मजबूर इस नर्वस और फ्रस्ट्रेशन से ऐसे इकदाम पर मजबूर हो रहे हैं जिसका फायदा उनको कोई नहीं पहुंचेगा बल्कि उल्टा नुकसान का। और हम देख रहे हैं कि फलस्तीनियों के बावजूद के मुस्तकिल 1-2-3 लोग शहीद हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं और उनका दिन ब दिन जो है कि कॉन्फिडेंस जो है, एतमाद जो है वो खत्म हो रहा है। आपने देखा कि अभी किस तरीके से वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और बेनेट ने खुद एतराफ किया है कि लगता है कि हम इसको यानी अब ज़ायनिस्ट रेजिम को बाकी नहीं रख सकेंगे, खुद वो कॉन्फिडेंस लूज कर गया है जो बहुत ही तुमतराफ के साथ आए थे हम फलस्तीन के मामलात को संभाल लेंगे और इनको ये कर, तो खुद। और फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनके कोलिशन गवर्नमेंट में इख्तलाफात हो गए और फिर उनको जाना पड़ रहा है इलेक्शन की तरफ, तो ये सारे जो सिनेरियो हैं, ये सारे जो ये मनाजिर हैं बता रहे हैं कि अब ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस जब लूज कर जाता है तो फ्रस्ट्रेशन में आदमी इस किसी की अमकाना करता है। लेकिन आपने जैसा अभी जिक्र भी किया कि बड़ा ही वाजह मैसेज और पैगाम दिया है ये खासतौर से जिहाद इस्लामी ने जो ड्रिल किया है, ये बहुत ही अहम चीज है। बल्कि उसमें एक बात भी कही है कि उनके बड़े कॉन्फिडेंस से जिहाद इस्लामी के जो तर्जुमान थे के लगता यानी एक दुनिया में और खित्ते में कोई बड़ा तहव्वुल यानी सामने आने जा रहा है।
विश्व दर्पण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
तेहरान में मौजूद टीकाकार गुलाम अब्बास हैदरी का कहना है कि इसराइली सैनिक और ज़ायनी कट्टरपंथी लगातार आम नागरिकों को तो निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों को भी तेजी से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आज तक दुनिया के किसी भी देश ने उसकी आलोचना नहीं की। दुनिया का एकमात्र देश ईरान ही है जो लगातार इसराइली अपराधों पर से पर्दा उठा रहा है।
मीडिया से मुतल्लिक सहाफी हैं और जो कैमरामैन हैं और जो नामनिगार हैं उन्हें बेदर्दी के साथ शहीद किया जाता है। अफसोसनाक खबर ये है हमारे लिए सबके लिए कि आवाज़ उस तरीके से उठाई नहीं जाती जिस तरीके से आवाज़ उठानी जानी चाहिए। अब आम फिलिस्तीनी जब शहीद होते हैं तो अमरीकी दबाव की वजह से, सेहूनी दबाव की वजह से जो मीडिया है वो जो है खामोश रहते हैं, लेकिन कम से कम जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनके लिए तो आवाज़ उठानी जानी चाहिए। बहरहाल इस कस्म के वाक़ात तो फ़िलिस्तीन में आए दिन रुनुमा होते रहते हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से जो परचम मार्च था और उसके बाद जो जिस तरीके से उन्होंने मस्जिद अल अक्सा पर अटैक किया और जिस तरीके से तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद को ज़ख्मी किया, और नमाज के वक्त जब वो हालत रुकू और सजूद में थे एक आंसू गैस के शेल दागे, कई जो है उससे जो है बुरी तरह मुतासिर हुए। बहुत से ऐसे फ़लस्तीनी भी थे जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी न फ़कत आलमी सतह पर इसकी मजम्मत नहीं की गई बल्कि कोई रद्दअमल भी सामने नहीं आया। इसकी पता नहीं क्या वजह है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह यह है कि गासिब इसराइल की हम जानिबा अमरीका और यूरोपीय मुल्कों की हिमायत है, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अक्वाम मुत्तहिदा, ओआईसी और इस तरह अरब लीग ये सब खामोश तमाशाई बने हुए बैठे हैं, और उन्हें चाहिए कि इस कस्म के वाक़ात पर इकदाम करें, रद्दअमल दिखाए, लेकिन उन्होंने सुब जो है वो खामोशी इख्तियार की है। और उनकी इसी खामोशी का गलत फ़ायदा उठाते हुए सेहूनी हुकूमत आए दिन जो है इस कस्म की जो घिनौनी हरकतें कर रही है, और जो उसके फौजी है वो आए दिन चाहे वो गज़ा हो, चाहे वो अलखलील हो, चाहे वो जनीन हो, वहाँ पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है जो फौजी हैं, और इसके अलावा जो है वो जिस तरीके से अटैक करते हैं, जिस तरीके से तशद्दुद करते हैं, जिस तरीके से आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करते हैं, उसके रद्द अमल में कोई आलमी सतह पर सिवाय चंद एक मुल्कों के जिस तरह इस्लामी जमहूरी ईरान हो और दूसरे ममालिक हो और किसी तरफ से भी कोई आवाज़ उठाई नहीं देती।
اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ ابھی حالیہ جنگ جو ہوئی اس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ جنگ تو اسرائیل نے تھوپی تھی لیکن فلسطینی جیالوں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا اور سیف القدس آپریشن نے اپنا اتہاس رچ دیا۔ اس کاروائی کے بعد میدان جنگ کا سنتولن کس اور مڑا ہے؟ پاکستان کے ٹیکہ کار راشد عہد کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنی تباہی صاف نظر آنے لگی ہے۔
جی جی، عزم صادقین ڈرل نے ہیبت طاری کر دیا ہے، بلغہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو سیف القدس کی یعنی کہ سپورٹ دی تھی گویا کہ غزہ کے مجاہدین فلسطینیوں کو، یعنی یروشلم میں فلسطینیوں کو سپورٹ دی تھی، جو احمد کر رہے تھے مسجد الاقصا پر ان کے ناپاک قدم نہ آئے، اس حوالے سے انہوں نے گویا کہ پوری مزاحمت کی، اور یعنی وہ ہر طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور اس میں جب انہوں نے بہت زیادہ یعنی زیادتی اور بربریت کا مظاہرہ کیا تو پھر غزہ کے جو چاہے وہ جہاد اسلامی ہوں چاہے حماس ہوں اور مزاحمتی قوتیں، انہوں نے ٹھیک ٹھاک جواب دیا اور بالآخر ان کو پسپائی پر مجبور ہونا پڑا اور سیز فائر کرنا پڑا۔ تو اس ان پتہ چل گیا ہے فلسطینیوں کو کہ ہم جس راہ و روش پر جا رہے ہیں مزاحمت کی، چاہے وہ مقبوضہ فلسطین کے اندر ہوں تو کی طرف سے ہوں، وہ بہت مشکل ہے کہ یہ ہو کہ اس کو وہ روک پائیں گے۔ اور ہیبت تاری اس لیے کہ دیکھیے نا، حسن نصر اللہ نے صاف کر دیا کہ ہم تو تیل نکالیں گے، یہ خود اسرائیل کی یعنی ہیبت کو ختم کرے گا، اور ہر طریقے سے لبنان اور حزب اللہ جو ہے وہ فلسطین کی موت کا سبب بنے۔ تو اسی طریقے سے آغا نعیم قاسم نے کل ہی یہ بیان دیا ہے کہ اسرائیل جرت نہیں کر سکتا ہے لبنان پر حملے، تو گویا کہ ایک محاذ تو ایسا مضبوط ہو گیا ہے کہ محاذ کے مضبوط ہونے کے نتیجے میں جو فلسطین غزہ کی جو استقامی مزاحمت ہے، اسلامی مزاحمت ہے یا فلسطینی استقامت ہے، وہ کھل کر کے اور بہت ہی کاروائی کرنے پر قادر ہو گئی ہے۔ اور اس لیے کہ لبنان کے حزب اللہ کے لیڈر نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ نعیم قاسم نے صاف کر دیا کہ یہ لبنان پر جرت ہی نہیں کر سکتے ہیں، چنانچہ ایسا نہیں کہ جنگ ہوگی تو وہ لبنان سے بھی، یعنی ان کو کنسنٹریٹ کرنا ہوگا فلسطینی میں، اور حزب اللہ آزاد ہوگی پورے طور سے فلسطینی مزاحمت کی ہر طریقے سے سپورٹ کرنے پر۔ جب یہ صورتحال ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر دو چار ہے اور کس قدر بے چارگی اور بے بسی ہے اسرائیل کی۔ تو یہ جو کانفیڈنس بہت تھا گریٹر اسرائیل میں، اس وقت تو خواب چکنا چور ہو گیا ہے، اب تو ان کو اپنے سروائیول کی فکر ایک عرصے دراز سے لگی ہوئی ہے، اور اب ان کی نابودی کے جو پروسیس ہے، ایلیمینیشن کا جو پروسیس ہے یعنی کہ نقشہ ہستی سے، تو وہ اس کو یعنی وہ بالکل ایک حقیقت بن کر سامنے آ رہی ان کے سامنے بھی۔
دوستوں، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروع آپ سن رہے تھے کارکرم وشو درپن، جس میں فلسطین کے حالات کا جائزہ آپ کی سیوا میں پرستت کیا گیا۔ اور اب امریکی مانواادھیکار کے وشے پر ہمارا ایک وشیش کارکرم آپ کی سیوا میں پرستت ہے۔
दोस्तों विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं, जिसमें अमेरिका की ओर से आतंकी संगठनों के समर्थन पर चर्चा की जाएगी। मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों ईरान के कैलेंडर में चौथे महीने की 6 तारीख से लेकर 12 तारीख अर्थात 27 जून से 3 जुलाई को अमरीकी मानवाधिकार सप्ताह के रूप में घोषित किया गया है। शमसी कैलेंडर में चौथे महीने का नाम तीर है। तीर वो महीना है जिसके दौरान ईरान के भीतर कई महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाएं घटी। इसका कारण अमरीका की वे मानवाधिकार विरोधी कार्रवाइयां हैं जो उसने इस्लामी गणतंत्र ईरान के विरुद्ध आतंकवादी संगठनों की सहायता करते हुए करवाई। इन आतंकी संगठनों में मुजाहिदीन खल्क सर्वोपरि है।
अमेरिका ने इस आतंकवादी संगठन के माध्यम से 27 जून से 3 जुलाई के बीच जो आतंकवादी कार्रवाइयां करवाई उनमें से एक 27 जून 1981 को ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामनेई की विफल हत्या का प्रयास, 28 जून 1981 को जमहूरी इस्लामी पार्टी के कार्यालय में वह विस्फोट, 28 जून 1987 को सरदश्त में रासायनिक बमबारी, 2 जुलाई 1981 को आयतुल्लाह सदूकी की हत्या और 3 जुलाई 1988 को ईरान के यात्री विमान पर हमला करके उसको नष्ट करने जैसी कार्रवाइयों का उल्लेख किया जा सकता है।
तेहरान में जमहूरी इस्लामी कार्यालय में जो आतंकी कार्रवाई की गई थी उसमें ईरान के 72 वरिष्ठ अधिकारी शहीद हो गए थे, जिनमें सबसे प्रमुख आयतुल्ला शहीद बेहिश्ती थे। वे उस समय ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख थे। उनकी गणना इस्लामी क्रांति के महत्वपूर्ण नेताओं में होती थी। वे जमहूरी इस्लामी पार्टी के संस्थापक और उसके महासचिव भी थे। जिस समय मुजाहिदीन खल्ग ने जमहूरी इस्लामी पार्टी के कार्यालय में आतंकवादी घटना अंजाम दी, उस समय डॉक्टर बेहिश्ती पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए भाषण दे रहे थे। अपने भाषण में वे फ्रांस भाग जाने वाले ईरान के पहले राष्ट्रपति बनी सदर के फरार के बाद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
अमेरिका और पश्चिमी सरकारों का समर्थन प्राप्त आतंकवादी गुट मुजाहिदीन खल्ग या MKO ये सोचता था कि इस्लामी क्रांति से संबंधित अग्रिम पंक्ति के नेताओं की हत्या करके वो इस्लामी शासन व्यवस्था को सरलता से गिरा सकता है। अपनी अन्य आतंकी कार्रवाई में अमेरिकी समर्थन हासिल इस आतंकवादी गुट ने हफ्ते तीर के दिन की गई आतंकी कार्रवाई में से एक दिन पहले स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के आंदोलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती आयतुल्लाह खामनेई को उस समय अपना लक्ष्य बनाया जब वे दक्षिणी तेहरान की एक मस्जिद में भाषण दे रहे थे। इस आतंकवादी घटना में वे बुरी तरह से घायल हो गए थे।
क्रांति विरोधी गुट फुरका ने तत्कालीन संसद सभापति हाशमी रफसंजानी की भी हत्या की कोशिश की थी। हालांकि अपने काम में वे एक गुट सफल नहीं हो सका, किंतु इस हमले में वे घायल हो गए थे। मानवाधिकारों का समर्थन करने का दावा करने वाले पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त आतंकी गुट MKO ने जमहूरी इस्लामी पार्टी के मुख्यालय में आतंकवादी घटना अंजाम देने के 2 महीनों के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में बम विस्फोट करके तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अली रजाई और प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद बाहुनर को शहीद कर डाला।
पश्चिम का समर्थन प्राप्त आतंकी गुट MKO ने शाही सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के उद्देश्य से 1960 के दशक के मध्य से अपना काम शुरू किया था। इस संगठन के नेताओं की सतही सोच के कारण उनके उद्देश्य स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के लक्ष्य से बिल्कुल भिन्न थे। वैचारिक दृष्टि से इस संगठन के दिग्भ्रमित होने से पहले ही इमाम खुमैनी ने उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया था। इमाम खुमैनी के नेतृत्व और जनता के प्रयासों से इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद शाह की जेलों में बंद इस संगठन के सदस्यों को आजाद कर दिया गया था। वे अपने हिसाब से क्रांति में भागीदारी के इच्छुक थे और अपनी बातें पूरी होते न देख उन्होंने क्रांति विरोधी कार्रवाइयां आरंभ कर दी।
इस आतंकी गुट ने जब ये देख लिया कि जनता के विरोध और अनावश्यक मांगों के कारण यहाँ पर उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो उन्होंने ईरान की इस्लामी शासन व्यवस्था को गिराने के लिए आतंकवादी कार्रवाइयां आरंभ कर दी। उन्होंने इमाम खुमैनी के आंदोलन के बहुत से टॉप क्लास के लोगों को शहीद कर दिया। इस आतंकी गुट ने पूरे ईरान में नेताओं, धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और गणमान्य लोगों की हत्याओं के अतिरिक्त आम लोगों की भी हत्याएं करनी शुरू कर दी। एमकेओ नामक आतंकी संगठन ने अपनी आतंकवादी कार्रवाइयों में अब तक 17,000 से अधिक लोगों की हत्याएं की हैं।
संसार के देशों में से ईरान ऐसा देश है जो बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवाद की भेंट चढ़ा है। ये देश बहुत सी आतंकी घटनाओं का साक्षी रहा है। अमेरिका, सोवियत संघ और उसके चेले चपाटे इस्लामी क्रांति के शत्रु रहे हैं। उन्होंने इस्लामी क्रांति को नुकसान पहुंचाने के लिए हर अवसर से लाभ उठाया। यही वजह है कि क्रांति के विदेशी दुश्मनों और एमकेओ जैसे आतंकी संगठन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने हुए हैं। 1980 के दशक की आतंकी कार्रवाइयों में अमेरिका की भूमिका वो मुद्दा था जिसकी ओर स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी संकेत किया है। 15 अक्टूबर 1982 को जुमे की नमाज के दौरान किरमानशाह के इमाम जुमा आयतुल्लाह अशफी इस्फहानी की शहादत के बाद स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आतंकी गुट को मुनाफिक और मुनहरिफ कहकर संबोधित किया। उन्होंने इन कामों के लिए विश्व की बड़ी शक्तियों को जिम्मेदार बताया था।
इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान में की जाने वाली आतंकवादी कार्रवाइयों पर नजर डालने से पता चलता है कि अमेरिका ने इनका मार्गदर्शन किया था। तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास से मिलने वाले प्रमाण और दस्तावेज बताते हैं कि अमेरिकी सरकार ये प्रयास करती थी कि आतंकी गुट एमकेओ से निकट होकर उसकी आतंकी कार्रवाइयों का समर्थन करे और इसी गुट के माध्यम से इस्लामी गणतंत्र ईरान के विरुद्ध अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करे। बाद में सन 1987 में फ्रांस प्रेस ने इस बात की पुष्टि की थी कि अमेरिकी सरकार और आतंकवादी गुट एमकेओ के बीच संपर्क पाया जाता है। लोमोंड समाचार पत्र के 24 अप्रैल 1987 के संस्करण में एक रिपोर्ट में रिचर्ड मर्फी ने अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य के एक सवाल के जवाब में इस बात की पुष्टि की थी कि आतंकी गुट एमकेओ के साथ अमेरिका संपर्क में है। रिचर्ड मर्फी उस समय अमेरिकी विदेश मंत्रालय में मध्य पूर्व मामलों के प्रभारी थे।
इस्तांबुल से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र मिली गजेट ने 14 अप्रैल 1993 को लिखा था कि मुनाफिकीन या एमकेओ ने अपनी आतंकी गतिविधियां जारी रखने के लिए अमेरिकी गुप्तचर सेवा CIA के बड़े पैमाने पर सहायता हासिल की थी। अपनी रिपोर्ट में वो आगे लिखता है कि तुर्की और इराक में अपने कार्यालयों और CIA से सहायता हासिल करके एमकेओ के सदस्य ईरान के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए भेजे जाते थे।
अमेरिका के लिए इस बात का कोई महत्व ही नहीं है कि आतंकवादी संगठनों के साथ उसके संबंध हैं। अमेरिका के लिए मानवाधिकार अब केवल एक हथकंडा है जिसके माध्यम से वो अपने वर्चस्ववादी हितों को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाता रहता है। अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका मानवाधिकारों का प्रयोग करता आ रहा है। इस बात को ईरानी राष्ट्र ने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है कि अमेरिका के आतंकी गुटों के साथ निकट संबंध हैं। एंटीवार वेबसाइट पर डैनियल लैरिसन अपने लेख में लिखते हैं कि जिस प्रकार के मुनाफिकीन या एमकेओ ने सद्दाम के साथ खुलकर सहयोग किया था कि वो उनके देश पर हमला करे, ठीक उसी प्रकार से अब वे अमरीका को ईरान के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाने के प्रयास में लगे हुए हैं। यह आतंकवादी संगठन प्रतिवर्ष अपनी एक बैठक आयोजित करता है जिसमें ईरान में शासन व्यवस्था को बदलने का दुष्प्रचार किया जाता है। इन बैठकों में अमेरिका, कनाडा और यूरोप के बहुत से भूतपूर्व एवं वर्तमान अधिकारी भाग लेकर आतंकी गुट की नेता का आशीर्वाद लेते हैं। अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्यों ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप में इस आतंकी गुट के नेताओं से भेंट वार्ताएं की हैं।
ये कैसे विडंबना है कि निर्दोषों की हत्याएं और आतंकवाद विरोधियों के विरुद्ध युद्ध करने वाले आतंकवादी गुट के सदस्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में शांति के साथ जीवन गुजार रहे हैं। उनको अपने अपराधों की सजा का बिल्कुल भी डर नहीं है। ये आतंकवादी बहुत ही बेशर्मी से मानवाधिकारों का खुलकर हनन कर रहे हैं। इन आतंकवादियों को शरण देने वाले अमेरिका और अन्य देशों को इन अपराधियों के मानवाधिकार के हनन का जवाब देना चाहिए।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये प्रसारण शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम के बारे में आपके सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 0098903506592। तो इसी के साथ अगली मुलाकात तक अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.